बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बह रास्त नशिस को लेकर वफ़द डायरेक्टर अमरीका गामदी सेंटर से एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं, हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी माजी हाल और मुस्तकबिल सिलसिले गुफ्तगू की आज 11वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता 10 नशिस्तों में हमने गामदी साहब से इस जमात के वजूद पज़ीर होने के मुहर्रिकात, पस मंज़र, मौला मौदूदी की वो बुनियादी फ़िक्र जिसकी वजह से जमात इस्लामी बनी, इस जमात की ज़िंदगी के अहम मराहिल, बड़े वाकयात, क्या क्या पेश आए, चाहे वो 56 के दस्तूर में मौलाना की सिफारशात हों, चाहे वो फातिमा जिन्ना के इलेक्शन के अंदर उनकी हिमायत हो, इसी तरीके से मशरिकी पाकिस्तान का सानिया, सोशलिज्म का एक चैलेंज, पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात, हर हर पहलू पर एक पूरा का पूरा पस मंज़र और खाका हमारे सामने आ चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि एक जमात बनी और बनने के बाद वो पहुंच जाती है 1970 में, जहाँ पर एक इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन से पहले जमात की, इसकी क़्यादत की तवक्कात ये हैं कि जो कुछ उन्होंने पिछले 20-25 साल में पाकिस्तान में किया है, अब उसका फल काटने का वक्त आ गया है। लेकिन हमने देखा कि 70 के इंतखाबात में एक बदतरीन शिकस्त होती है जमात इस्लामी को, और मौला मौदूदी भी उसके बाद खुद अमली तौर पर जमात से मुतल्लक नहीं रहते। आमदी साहब, 70 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, हम ये देखते हैं कि उसके बाद कमोबेश 50 साल गुजर गए, आज तक जमात इस्लामी के साथ वही कुछ होता चला आया है। और एक ख्वाहिश है, आरजू है, मकसद है, निस्टलजिया है कि काश पाकिस्तान की आवाम इस दर्द को पहचाने कि उनकी बका, उनकी फला जमात इस्लामी के पेश करदा मंशूर और दस्तूर के अंदर है, लेकिन आवाम ने उनको कबूल नहीं किया। क्या वो गलती है, क्या वो बुनियादी मुहर्रिकात हैं आपकी नज़र में, जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी तहरीक जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन वो मकसद, वो नतीजा हासिल नहीं हो सका जिस नतीजे के मौलाना मौदूदी खुद भी मुंतजर थे, और आज तक जमात इस्लामी उसका ख्वाब देख रही है?
ये महज ख्वाहिश नहीं थी, उनके फिक्र का नागुजीर तकाजा है। उस फिक्र की तफसीलात का तो ये मौका नहीं है, लेकिन मैं इब्तदा में अर्ज कर चुका हूँ कि तहरीक खिलाफत की नाकामी से जो ज़हनी कैफियत उन्होंने अपनी खुद बयान की है, उसी का नागुज़ीर लाजमी नतीजा ये था कि वो इस तरह की एक जमात बनाए। इसके लिए दीन की जो ताबीर उन्होंने की, उसकी तफसीलात को भी अलग रख दीजिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि मुसलमानों के माशरे में ये सिर्फ़ सालेहीन का हक है कि वो हुकूमत करें, यानी हुकूमत उन लोगों के पास होनी चाहिए जो अल्लाह और रसूल के सच्चे वफ़ादार हैं, दीन के ज़रूरी तकाज़े पूरे करते हैं, अख़लाक़ी लिहाज से काबिल एतमाद हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे दीन का तकाज़ा ये है कि हुकूमत ऐसे ही लोगों के हाथों में आनी चाहिए। इस लिहाज से अगर आप गौर करें तो फलसफे की सतह पर गोया ये वही बहस है जो अफलातून के ज़माने से चली आ रही है। हुकूमत का हक किसको हासिल है? हक का मतलब क्या है? हक का मतलब ये है कि जैसे हम किसी मनसब, किसी जिम्मेदारी के बारे में गुफ्तगू करते हुए ये तय करते हैं कि इसकी अहलियत ये है, ऐसा ही होता है। हमने भी जो मनासिब बना रखे होते हैं या हम कोई इदारा कायम करते हैं, उसमें जिम्मेदारियाँ देते हैं, तो ये बताते हैं कि इसमें फला फला मनसब के लिए ये अहलियत की शराइत। अगर आप उसूल में देखें तो कुरान मजीद ने क्या कहा है? कुरान मजीद ने भी सूरह निसा में यही कहा है कि जब तुम्हें हुकूमत मिल गई है तो अन तवद्दुल अमानात इला अहलेहा, तो अदल इख्तियार करो, इंसाफ का मामला इख्तियार करो, और जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द को जो उसके अहल हैं। अब अहलियत तो बुनियाद होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो हुकूमत के लिए अहलियत क्या है? कुरान मजीद ने भी इसका एक जवाब दिया है। अफलातून को इसरार था कि ये तो फलसफियों का काम है, वही अच्छी हुकूमत फराहम कर सकते हैं। दुनिया में ये बहस हमेशा जारी रही है, अगरचे कुछ नतीजा इसका कभी नहीं निकला, लेकिन रही है। आज भी इस वक्त भी आप लोगों के पास बैठ जाएँ तो किसी मजलिस में अगर लोग मौजूद होंगे तो गुफ्तगू हो रही होगी, वो कहेंगे कि ऐसे लोग होने चाहिए, वही लोग हैं जो हमारी तकदीर संवार सकते हैं, उसमें कोई शख्स ये कहा था कहेगा कि वो मज़हबी लोग होने चाहिए, कोई शख्स ये कहेगा कि वो बड़े हकीम और फ़लसफ़ी और सियासी उमूर की बसीरत रखने वाले होने चाहिए, कोई कोई दूसरी बात कहेगा। तो उसूल के लिहाज से तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लाम क्या यही तकाज़ा करता है? वो यही कहता है कि तुम्हारे हुक्मरानी का हक उनको हासिल है, या उन्हीं लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी जानी चाहिए। बेशक जिस वक्त हम लोगों के साथ बात करेंगे और तरगीब की जगह पर खड़े होंगे, यही कहेंगे कि तुम अपनी हुक्मरानी की ज़िम्मेदारियाँ उन लोगों को दो जिनकी अमानत पर, दयानत पर तुम एतमाद कर सकते हो, जो तुम्हारी खिदमत करने का सच्चा जज्बा रखते हों। अगर वो मुसलमानों के माशरे में है तो आप लफ्ज़े सालहीन भी इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए कि एक मुसलमान को जब आप एक लफ्ज़ से ताबीर करते हैं कि वो क्या होता है, तो उसके लिए कुरान मजीद ने जो सबसे आम दर्जा बयान किया वो सालहीन का दर्जा है। यानी ये असल में हर मुसलमान को होना चाहिए, तो यही आप कहेंगे भी। ज़ाहिर है कि हर तहजीब अपने लिहाज ही से इस बात का इंतखाब करती है। कुरान मजीद ने जिस वक्त तालूत का इंतखाब किया तो देखिए उसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। बनी इसराइल ने पूछा कि इसके इंतखाब की वजह क्या है, यानी हमने तो ये कहा था कि हमारे लिए बादशाह का इंतखाब कर दें, तो आपने इंतखाब किया है एक छोटे कबीले का आदमी है, कोई दौलत भी इसको ख़ास हासिल नहीं है, तो वजह क्या है? यानी अल्लाह ताला के इंतखाब पर उन्हें सवाल किया है। जवाब क्या दिया है? बस्ततम फिलेल में वाल जिस्म, यानी दो चीज़ें हैं जो इसको बहुत बर्तरी के साथ हासिल है। हुकूमत करने के लिए जो इल्म और बसीरत चाहिए और ताकत, तो कुरान ने दो चीज़ों का जिक्र किया। ज़ाहिर है कि ताकत ये एक लफ्ज़ है, इसका ताल्लुक हालात से, यानी कभी ऐसा होता है कि जिस्मानी ताकत फैसला कुन होती थी। मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया कि ये हुकूमत, रियासत कबायली तमद्दुन में कहाँ से पैदा हुई? यहीं से पैदा हुई कि जब लोगों ने दूसरों पर जुल्म किया या किसी ने ज्यादती की, तो किसी ज़रा अच्छी ताकत रखने वाले आदमी ने जालिम का हाथ पकड़ लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ख्याल किया कि हमारी इज्जत आबरू की यही हिफाजत कर सकता है। तो ताकत के बगैर हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं है, ताकत है और उसके लिए बसीरत है, इल्म है। कुरान ने ये बात कही है, लेकिन बहरहाल उसको उन्होंने सालहीन से ताबीर किया और ये कहा कि सालहीन ही को हक़ हुकूमत हासिल है। यही वजह है कि अगर आप जमात इस्लामी का मुताला करें तो उसके दस्तूर की इब्तदा में कोई 30-32 के करीब निकात हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक साले मुसलमान कौन होता है।
अच्छा,
और जो आदमी इन हकायक को नहीं मानता या इन चीज़ों पर अमल पैरा नहीं होता, वो कम से कम मेयार पर भी साले नहीं करार पा सकता। वो कम से कम मेयार है जो बयान किया गया है, तो उनकी बुनियाद में ये चीज़ मौजूद है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि वो बाकी दुनिया के लिए भी अपनी ताबीर के लिहाज से इस बात के कायल ही नहीं, दाई हैं, और उन्होंने इसको बयान किया है कि दुनिया में किसी कौम को भी हक़ हुकूमत हासिल नहीं है, हक़ हुकूमत सिर्फ़ मुसलमानों को हासिल। यानी बाकी जितनी कौमें हैं वो अगर अपनी हुकूमतें कायम की हुई हैं तो वो दर हकीकत खुदा की ज़मीन पर बगावत का इर्तकाब कर रही हैं। खुदा की ज़मीन पर खुदा के सच्चे मानने वालों ही को हुकूमत का हक हासिल है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें एक ख़ास लाए अमल का तकाजा करती हैं। चुनाचे जो लोग ये ख्याल करते हैं कि उनको दावत तक महदूद रहना चाहिए था, या वो उसी तरीके से अपनी बात कहते रहते हैं जिस तरह बिलमूम तबलीगी काम करने वाले लोग कहते हैं, वो दरहकीकत उनकी फ़िक्र से इनहराफ करते हैं। यानी उनकी फ़िक्र में पहले दिन से ये चीज़ मौजूद है कि फुसाक और फुजार के हाथ से नज़्म हुकूमत को ले लेना है, नज़्म हुकूमत सालहीन के पास होना चाहिए। तो मैं इस लिहाज से तो उनकी इस बात को दुरुस्त समझता हूँ कि जो उनका फ़िक्र है उसका लाजमी तकाजा यही था, इस तरफ उन्हें बढ़ना था। बहस क्या पैदा हुई? बहस ये पैदा हुई, और जिसमें उस वक्त के बड़े लोगों ने हिस्सा भी लिया, वो ये थी कि क्या इसका वक्त आ गया है, यानी वो ज़माना आ गया है कि जिसके बाद हम ये आखिरी इकदाम करें, और दूसरे ये कि क्या उसका तरीका इंतखाबात में हिस्सा लेना है। ये तो तय हो गया कि सालहीन के हाथ में ही हुकूमत का नज़म होना चाहिए। ये मैं उनके फ़िक्र की वजाहत कर रहा हूँ, यानी कोई अपनी राय नहीं ले रहा, उनके फ़िक्र की रूह से ये दोनों चीज़ें तय हैं। जिस वक्त आप हुकूमत का नज़म कायम करेंगे मुसलमानों में, तो वो कहेंगे सालहीन के पास होना चाहिए, सालहीन हक रखते हैं, और ये उनका वो हक है जो उनको खुदा ने दिया है, अब इस हक का इस्तकरार होना है, इसको माना जाना है या इसका इनकार करना है, ये अलग बहस। और जिस वक्त वो दुनिया के साथ बात करेंगे, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि उनकी हुकूमत कायम हो गई, तो अब दुनिया के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद क्या है, तो उसमें ताल्लुक़ की बुनियाद यही है कि जल्द या बदेर हम तुम्हारी हुकूमतें ख़त्म कर, यानी ये नागुज़ीर है। चुनाचे वो सहाबा किराम के उस इकदाम को बिनाए इस्तदलाल बनाते हैं कि हम तो दुनिया की सरहदों पर खड़े होकर यही कहेंगे कि ईमान लाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना जिजिया दो। तो जिजिया देने का मतलब क्या है, यानी हमारी हुकूमत तस्लीम करो और अपनी महकूमी की अलामत के तौर पर हमें जिजिया अदा करो। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल इब्तदाई तसनीफात में से अल जिहाद फिल इस्लाम में पूरी वजाहत से बयान कर दी है। बाद में भी इसकी तफसीलात में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, वरना उनका बुनियादी मौक़िफ़ यही रहा है। तो इससे ये बात वाज़े करना मकसूद था कि जो उन्होंने दीन की ताबीर की है, जिस तरह उन्होंने दीन को समझा है, उसमें ये नागुज़ीर इकदाम था। और जमात इस्लामी में भी बहस ये नहीं हुई, ना माशी गोट में ना दूसरे मौक़ों के ऊपर बहस ये नहीं हुई कि ये बात सही नहीं है या ये ताबीर सही नहीं है या इसमें दीन को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा। बहस ये हुई कि क्या वक्त आ गया है इसका, यानी क्या हमने बिलवाक़े सालहीन की वो कुव्वत पैदा कर ली है, हमने जो लोग पैदा किए हैं, जिनको मुनज़्ज़म किया है, वो फिलवाक़े इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब मुल्क का नज़्म व नस्क संभाल सकें। एक बहस ये है, और दूसरी ये कि उसके लिए इंतखाबात का तरीका इख्तियार करना मौजू है या नहीं है। चुनाचे बाद में हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जब मनहज इनकलाब नब्बी लिखी है, तो आप ये देखिएगा वहाँ बहस ये नहीं है कि ये काम नहीं करना या इनकलाब नहीं लाना, वो भी इनकलाब के दाई हैं, यानी हुकूमत लेनी है, लेकिन हुकूमत लेने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। इस तरीके कार में अब गुफ्तगू हो रही है, इंतखाबात लड़ने हैं, कोई हंगामा करना है। मैंने उनके तरीके के ऊपर तबसरा किया था कि ये इनकलाब बजरिया हंगामा और एहतजाज है, तो कोई ज़रिया तो आप इख्तियार करेंगे ना उसके लिए, ये बताएंगे। आप देखें अगर गौर करके तो ज़राए क्या लामहदूद हैं, यानी वो ज़राए जो अल्लाह ताला ने पैदा किए होते हैं उन्हीं का आप इस्तक़सा करते हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो दुनिया की तारीख पर निगाह डाल के देखें तो हुकूमत हासिल करने का एक तरीका ये है कि आप कोई लश्कर बनाएं और फिर कुव्वत के बल पर हुकूमत हासिल कर लें। हमारी आँखों के सामने तालिबान ने यही तरीका इख्तियार किया। इससे पहले यानी सदी डेढ़ सदी पहले आले सऊद यही तरीका इख्तियार करके सऊदी अरब में अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। ये मालूम है कि तुर्कों की हुकूमत थी, उन्हीं के उम्माल वहाँ हुकूमत कर रहे थे, बगावत हुई और बगावतें काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। उनमें से पहली मरतबा जो बगावत हुई वो फरुख कर दी गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने इलाकों में एक नज़म कायम किया, वहाँ से बाहर निकले और फिर पूरे जज़ीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। वो कब्ज़ा लश्करों के ज़रिए से हुआ था, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, यानी बाबर ने आकर फरगाना से हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल ली। किस तरह संभाल ली, यानी कोई दस्तूरी इंतखाबात हुए थे, पानीपत के मैदान में लश्करों का मुकाबला हुआ, इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो गई, बाबर को फतह हासिल हो गई। तो एक तरीका ये था कि फतूहात के ज़रिए से कोई लश्कर बनाएं और आप हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें। दूसरा तरीका दौरे हाजिर में लोगों को ये मालूम हुआ कि इनकलाब लाने के लिए अवाम को मुतहर्रिक किया जाए, वो गलियों में निकल आए, वो एहतजाज करते हुए जब गलियों में निकलेंगे और हुकूमत का नज़्म मुअत्तल कर देंगे, तो उसमें भी इसका पूरा इम्कान है कि इंतखाबात के बगैर ही आपके हाथ में आ जाए हुकूमत। इस तरह का मामला हम ईरान में देख चुके हैं, यानी वहाँ यही हुआ कि आमतुन्नास के अंदर एक हरकत पैदा हुई, वो हरकत बढ़ती चली गई, उसको क़्यादत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सूरतों में मिली, यहाँ तक कि उलमा के हाथ में क़्यादत बतदरीज आ गई। बहुत से उसके सियासी अवामिल हैं, उसके पस मंज़र में बहुत सी चीज़ें हैं, यानी किस तरीके से वहाँ कम्युनिस्ट तहरीक काम करती रही, मुसद्दिक के साथ क्या मामला हुआ, अली शरीयती का नुक्ता नज़र क्या था, ख़ुद उलमा किस जगह से बात कर रहे थे, शाह से किन दस्तूरी चीज़ों का मुतालबा किसी ज़माने में किया जा रहा था, तदरीज के साथ बात कहाँ पहुँची, यहाँ तक कि वो इनकलाब आ गया कि जिसमें शाह को हुकूमत छोड़ के जाना पड़ा, फ़ौज की ताकत भी तहलील हो गई और अवाम के एक जम्मे गफीर ने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक सैलाब ने गोया हर चीज़ को धर्म भरम करके रख दिया। तो इसको भी लोग हुकूमत तक पहुंचने का एक तरीका समझते हैं और इसकी मिसाल भी मौजूद है। तीसरा वही है कि आप इंतखाबात लड़ेंगे, इसके अलावा अभी तक कोई तरीका ईजाद नहीं हो सका। तीन ही तरीके हो सकते थे। अब जाहिर है कि इन तीन तरीकों में से किसी तरीके को इख्तियार करना था। तो जो दो सवाल पैदा हुए उनमें से पहले सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि हम तो तैयारी ही में लगे हुए थे और तैयारी करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही हम समझते थे कि हमें इख्तियार करनी है, यानी हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर में। तो 1941 में बनी है, 1947 तक वो कहते हैं कि यही तरीका है जो हमने इख्तियार किया था, लेकिन तकसीम ने सूरत हाल बिल्कुल तब्दील करके रख दी। अब एक मुल्क बन गया है, इस मुल्क को बनाया ही इस उसूल पर गया है कि यहाँ अल्लाह के दीन का गलबा होगा। इसमें तो नारे लगाए गए हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने इससे बुनियाद उठाई कि अब जब ये हो गया है और इसमें अब हुकूमत का नज़्म कायम होना है तो जो लोग इसको बनाने वाले हैं वो तो नज़र आ रहा है कि इस काबिल नहीं है कि इसका निज़ाम अल्लाह के दीन की हिदायत के मुताबिक चला सकें। तो लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपने ऐसे हुक्मरान मुंतखब कर सकें जो फिर उन्हीं की तबीर मुस्तार लें, तो सालहीन की एक जमात हो। तो अब हमारे पास तैयारी है या नहीं, हम पूरी तरह लोगों को मुनज़्ज़म कर सकें या नहीं कर सकें, जो भी थोड़ा बहुत असासा हमारे पास है इसको लेकर हमें लोगों को इंतखाब का मौका देना चाहिए।
अच्छा,
इसमें उनका इस्तदलाल ये था। इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इतफाक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में उन्होंने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है और माछीगोट में वो कोई 6 घंटे पर तवील तकरीर है जो 2 नशस्तों में की गई। वो इस वक्त तहरीक इस्लामी का आइंदा लायमल के उनवान से शाये होती है। उसकी बिल्कुल इब्तदा में अगर आप देखें तो वो बुनियादी मुकदमा वाजे कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद हम अब किसी खला में ही खड़े हुए। पाकिस्तान में ये बात पहले दिन से तय कर दी गई कि यहाँ एक दस्तूरी हुकूमत कायम होगी, यानी अगर यहाँ कोई बादशाहत कायम हो जाती, अगर कोई पुराना रियासती निज़ाम बहाल कर दिया जाता या और कोई नज़्म होता तो कुछ दूसरी बातें सोची जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो पहले दिन से इस बात पर इत्तेफाक हो गया। यानी ख़ुद बानिए पाकिस्तान भी इसी बात का तकाजा कर रहे थे कि यहाँ एक दस्तूर बनाया जाए, एक दस्तूरी हुकूमत होगी और उस दस्तूरी हुकूमत में लोगों की राय से हुक्मरानों का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने फरमाया कि ये बात मान ली गई है। जब ये बात मान ली गई है तो इसका एक लाजमी नतीजा है, वो लाजमी नतीजा ये है कि अब पुरमन इंतकाल इक्तदार का तरीका गोया असल तरीके की हैसियत से तय कर लिया गया है। इस पर इस पूरी ममलकत में इत्तेफाक है, इसमें जो जमात बनाने वाली है उसको भी इत्तेफाक है, जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी इत्तेफाक कर रही हैं। जब इसमें इत्तेफाक हो गया कि यहाँ पुरमन इंतकाल इक्तदार के लिए लोगों की राय ली जाएगी, तो अगर दीनी लिहाज से देखिए तो यही एक आइडियल और मिसाली तरीका भी है। चुनाचे उन्होंने खिलाफत मलूकियत में दलायल देकर बयान किया है कि सहाबा कराम के ज़माने में इसी तरीके की बुनियाद रखी गई थी। तो एक तो दीनी लिहाज से यही मामला है, दूसरे ये कि जब ये सूरत हाल बन गई है तो अब आप लश्कर नहीं बना सकते, अब ये दीनी लिहाज से भी गलत होगा। वो ये कहते हैं कि अब जबकि हमें पुरमन तरीके से इक्तदार तक पहुंचने का एक रास्ता बता दिया गया है तो फिर लोगों के जानो माल को ख़तरे में डालकर कोई और तरीका इख्तियार करना ये जायज़ कैसे हो सकता है, ये उन्होंने अपनी उस तकरीर में बड़ी तफसील के साथ बताया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो वो अपने फ़िक्र के लिहाज से अपने इस इकदाम तक बिल्कुल कंसिस्टेंट है, यानी इसमें कोई तजाद नहीं है। आप किसी तदबीर से या किसी तदबीर के इतलाक से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। चुनाचे उन्होंने 1951 में ही ये फैसला कर लिया। उस वक्त के इंतखाबात की कुछ तफसील हम बयान कर चुके हैं। फिर इंतखाबात हुए ही नहीं पाकिस्तान में, एक लंबा अरसा गुजरा। उन इंतखाबात में भी वो शरीक हुए, अयूब खान के ज़माने में हुए, उसमें सब लोगों ने मिल के फातिमा जना की हिमायत की, उस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ़ मराहिल में अब वो अपने लाए अमल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली मरतबे हुआ कि बालिग राय दही की बुनियाद पर इंतखाबात हुए, और अब तक भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर बग़ैर किसी मुदाखलत के कोई आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं तो वही हुए हैं कहा जाता है। उस पर भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, ख़ास तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, उन इंतखाबात में उनका ख्याल ये था कि हमने अब जमात को भी बड़ी हद तक मनज़म कर लिया है और जमात की शाखें जगह जगह कायम भी हैं, वो अब कारकुनों की एक बड़ी कुव्वत फराहम कर चुकी है, हमारा लिटरेचर लोगों के जहनों को भी बड़ी हद तक अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इस वक्त अगर लोगों की निगाह पड़ सकती है तो सालहीन की किसी जमात की हैसियत से हमारे ऊपर ही पड़ सकती है, चुनाचे अब मौका आया है तो हमें उसमें शरीक होना चाहिए। तो इस तरह वो शामिल हुए और मैंने अर्ज़ किया था कि जब फिर उसका नतीजा निकला और उसमें बहुत बुरी शिकस्त हो गई, चंद लोग थे जो कामयाब हो सके और कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में वोट भी नहीं मिले, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गोया एक सैलाब बना दिया अपनी दावत को और नतीजे के तौर पर यहाँ उनकी हुकूमत बन गई, मशरक़ी पाकिस्तान में मामला बिल्कुल ही दूसरी सूरत इख्तियार कर गए। उसके बाद फिर उन्होंने चंद हफ़्तों बाद, मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैंने खुद वो तकरीर बराह रास्त सुनी है, उन्होंने रशीद पार्क के छरा में वो तकरीर की है जिससे हमने बात शुरू की थी, याद होगा।
बिल्कुल,
मैंने ये अर्ज़ किया था कि उसमें उन्होंने फिर अपने तमाम मामलात के बारे में वाज़े मौक़िफ भी बयान किया, पस मंज़र भी बयान किया, तारीख़ भी बयान की और ये भी बताया कि हमने ये इकदाम क्यों किया था। तो इस पहलू से तो मेरे नज़दीक जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया है, जहाँ से उनका फ़िक्र शुरू होता है उसके लाजमी नागुज़ीर नतायज यही हैं। अब ये मेरे ख्याल में कोई बहस नहीं है कि अभी वक्त आ गया या नहीं आ गया, तदबीर की बहस है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि ताखीर से ये इकदाम कर लेना चाहिए था, दो चार इंतखाबात के बाद कर लेना चाहिए था। और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि सन 70 तक आते आते बहुत वक्त भी गुजर चुका था। अगर एक इंसान की ज़िंदगी आप देखें जो अपना कोई मकसद लेके उठा है, तो उसके लिहाज से ये कोई बड़ी यानी जल्दबाजी का फैसला नहीं है। सन 70 के इंतखाबात ही सामने आए हैं, आप देखें कि सन 79 में तो उनकी वफ़ात हो गई उसके 9 साल बाद। तो ये सूरत हाल है, उस मौके पर उन्होंने ये इकदाम किया है। अब रह गई ये बात कि इंतखाबात के अलावा क्या तरीका हो सकता है, तो उसूल के लिहाज से मेरे नज़दीक उनकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। यानी ये कि लश्कर बना के हमलावर हुआ जाए, उसके लिए तो बाबर को भी कोई इस्तदलाल करना पड़ेगा। यानी ये ठीक है कि दुनिया में ये रवायत रही है, खुद हमारे यहाँ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी तरीके से हुकूमत का लज़्म संभाल लिया था, और भी बहुत सी मिसालें उसकी हैं। खुद बनू अब्बास की हुकूमत कैसे कायम हुई इसी तरीके से, हस्पानिया में खुद बनू उमैया ने जाकर अपनी हुकूमत कायम की, तो वो तरीका तो मौजूद ही था दुनिया में। लेकिन उस तरीके को क्या इख्तियार करना चाहिए था, यानी कोई लश्कर बनाते वो और लश्कर बनाने के बाद बिल्कुल उसी तरह इकदाम करते। आप ये ख्याल ना करें कि ये वो माजी की बातें हैं, इस वक्त यही इकदाम हो रहा है
जी।
हमारे यहाँ इस वक्त एक पूरा गिरोह मौजूद है और वो हमारी मजहबी फिक्र से उठा है, उसने कोई 60,000-70,000 का बताया जाता है मोहतात जुबान में लश्कर तैयार कर रखा हुआ है। वही लश्कर है कि जो इस वक्त बार बार हमले कर रहा है और जिसको अब खवारिज करार देकर हमारे यहाँ हमारी अफवाज मुकाबला कर रही हैं। उस लश्कर के यहाँ लायामल क्या है, यही यानी सालहीन की हुकूमत होनी चाहिए, सालहीन कहिए या मजहबी रहनुमा कहिए, उनके यहाँ सालहीन में तालिबान की इस्तलाह है, तो उनकी हुकूमत होनी चाहिए, उनका लश्कर मौजूद है और वो लश्कर लड़कर आपको मजबूर कर देगा कि आप हुकूमत का नज़म दे दें। वो ये कहते हैं कि देखिए हमने अमरीका जैसी ताकत को यहाँ से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया और अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करती है और बिला शिरकत गैर हुकूमत कायम कर रहे हैं, दुनिया में जहाँ भी हमें मौका मिलेगा कायम कर देंगे। मौलाना सैयद अबुल साहब मौदूदी इसके कायल नहीं थे, यानी ये बात कि असली हदफ हुकूमत ही है, इस हदफ तक पहुँचने के लिए उसूल भी वही है कि सालहीन के हाथ में निज़ाम होना चाहिए, सालहीन की जमात अगर कोई फिलवाक के तरीके से तरतीब से कायदे से पैदा की गई है तो हमने पैदा की है। ये सारे मुकदमात अपनी जगह नाकाबिले तरदीद हैं। अब अगली बहस वही है कि इसके बाद फिर तरीका क्या इख्तियार किया जाए, तो मैंने अर्ज़ किया कि तरीका इसके सिवा क्या था, यानी अगर वो तलवार हाथ में लेने के कायल नहीं है और नहीं होना चाहिए तो फिर उसके बाद इंतखाबाती लड़ने थे और क्या करना। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनकी बात को अगर उसूल में मान लिया जाए तो इकदाम पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इकदाम करने के लिए जो तैयारी उन्होंने की या जिस तरह की जमात उन्होंने बनाई, क्या फिलवाक के उसी तरह की तैयारी होनी चाहिए थी और वैसी जमात बननी चाहिए थी, और अगर वो वैसी जमात है तो फिर उसे कामयाबी क्यों नहीं हो रही। तो मेरे नज़दीक इस पस मंज़र को पूरी तरह समझ कर अब हम इस जगह पर पहुंच गए हैं कि इस सवाल का जवाब दे सकते।
तो बिल्कुल वाजह हो गया राम साहब, मौलाना मौदूदी की जो बुनियादी फिक्र थी उसके नतीजे में जो लाहे अमल उन्होंने मुरतब किया और उसके नतीजे में जिस तरह वो आवाम के पास गए, सब कुछ एक कंसिस्टेंट लाहे अमल मुरतब जाविय नज़र के तौर पर सामने आता है। लेकिन सवाल बहुत अहम है, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, वहाँ के लोग इस्लाम को चाहते थे, इस्लाम को चाहने वाले उन लोगों ने इस्लाम के नाम पर सालेहीन की उस जमात को मुकम्मल तौर पर क्यों मुस्तरद कर दिया? और ना सिर्फ ये कि 70 के इंतखाबात में मुस्तरद किया बल्कि उसके 50 साल बाद तक मुस्तकिल मुस्तरद किया जा रहा है। क्या वजह थी कि एक मजहबी पार्टी सियासत के मैदान में कामयाब नहीं हो सकी और आज तक नहीं हो रही? हम सबसे जानेंगे, वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।